नमस्कार भारत, तारीख 1 अगस्त, दिन बुधवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। अमरीकी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करने के शक में फेसबुक ने 32 अकाउंट और पेज हटाए।
We do not have enough technical evidence to state definitively who is behind this.
केंद्र सरकार का कहना, इस साल 87 कश्मीरी युवक बने चरमपंथी, लेकिन क्या है इसकी असली वजह?
UN रिपोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो ज्यादतियां हैं वही उनको बंदूक की तरफ धकेल रही है।
सुनेंगे मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर उनके मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राय।
प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार जो तथाकथित गौ रक्षक लोग हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी आपत्ति व्यक्त की कि ऐसा नहीं चल सकता है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत कौर से। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 32 संदिग्ध अकाउंट और पेज को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। फेसबुक को शक है कि ये फेक अकाउंट और पेज नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए थे। फेसबुक ने शुरुआती जांच के आधार पर ये कार्रवाई की है। इस फेक अकाउंट से की गई कई पोस्ट में ट्रंप विरोधी संदेश हैं। मैक्सिको के दुरंगो शहर में विमान हादसा हुआ है। राज्य के गवर्नर का कहना है कि दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक विमान मैक्सिको सिटी जा रहा था। विक्टोरिया शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर विमान की फोर्स लैंडिंग करानी पड़ी। हादसे के वक्त विमान में 90 से ज्यादा लोग सवार थे। स्थानीय खबरों के मुताबिक दुर्घटना स्थल पर कई एम्बुलेंस मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक निकारागुआ में हुई राजनीतिक हिंसा के बाद हजारों लोग भागकर सेंट्रल अमरीकी देश कोस्टा रिका आ रही हैं। कोस्टा रिका में हर रोज औसतन 200 लोग शरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। डेनियल ओर्टेगा के खिलाफ अप्रैल से जारी प्रदर्शनों में अब तक करीब 300 लोग मारे गए हैं। UNHRC के प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर ने बताया कि लोग भारी तादाद में शरण मांगने आ रहे हैं, कुछ पंजीकरण स्थगित करने पड़े हैं। उन्होंने बताया,
According to Costa Rican authorities, nearly 8,000 asylum claims by Nicaraguan nationals have been registered.
कोस्टा रिका के अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल से करीब 8,000 शरणार्थियों के आवेदन मिले हैं। करीब 15,000 और लोगों को पंजीकरण कराने के लिए कुछ दिन बाद का समय दिया गया है। इन लोगों को शरण देने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की जरूरत है। ये थे UNHRC के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के एक जज ने बंदूकों की 3D प्रिंटिंग के लिए ब्लूप्रिंट ऑनलाइन जारी करने पर रोक लगा दी है। जून में ट्रंप प्रशासन ने डिजाइन डाउनलोड करने की अनुमति देने का फैसला किया था। अमेरिका के कई राज्यों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की थी। सिटल के एक जज ने कहा कि अगर बंदूकों का ब्लूप्रिंट इस तरह मुहैया करा दिया जाएगा तो ये अमरीका के नागरिकों के लिए खतरनाक साबित होगा। 3D बंदूकें आसानी से बनाई जा सकती हैं और इनका पता लगाना भी मुश्किल होता है। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने डेनमार्क के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है। बैंक पर आरोप है कि वो बड़े पैमाने पर कालेधन को सफेद करने के काम कर रहा था। ब्रिटिश फाइनेंसर और रूसी राष्ट्रपति के धूर आलोचक बिल ब्रॉडर की शिकायत पर जांच शुरू की गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि एस्टोनिया के डांस के बैंक में रूस समेत कई देशों से अरबों डॉलर का लेन देन हो रहा है। बिल ब्रॉडर ने कहा,
The level of information that we've been able to gather,
बीते 6 महीने में हमने इस मामले से जुड़ी काफी जानकारी इकट्ठा की है। इस जानकारी से साफ हो गया है कि एस्टोनिया डिवीजन के डांस के बैंक में कुछ कर्मचारी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये थे ब्रिटिश फाइनेंसर बिल ब्रॉडर के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान प्रमुख पॉल मैनफोर्ड के खिलाफ आपराधिक मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के पहले दिन अभियोजन पक्ष के वकीलों ने पॉल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पॉल पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और टैक्स चोरी का आरोप है। वकीलों के मुताबिक पॉल ने करोड़ों डॉलर विदेशी बैंकों में छिपाने की कोशिश की। हालांकि पॉल मैनफोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया है। अगर इस मामले में पॉल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 30 साल की सजा हो सकती है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों के बाद अमरीकी चुनावों को प्रभावित करने का मुद्दा फिर से तूल पकड़ सकता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने कहा है कि उसने नवंबर में अमरीका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करने के शक में 32 संदिग्ध अकाउंट और पेज को हटा दिया है। हालांकि इसके सीधे रूस से संबंध होने के पुख्ता सबूत अब तक फेसबुक को नहीं मिले हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यूरो का सार सुनिए गुरप्रीत कौर से।
सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 32 संदिग्ध अकाउंट और पेज को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। फेसबुक को शक है कि ये फेक अकाउंट और पेज नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए हैं। फेसबुक ने शुरुआती जांच के आधार पर ये कार्रवाई की है। फेसबुक की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख ने कहा कि कंपनी अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि इन पेजों को कौन चला रहा है, लेकिन पेज की कुछ फर्जी पोस्ट के तार रूस के अकाउंट से जुड़े हैं। उन्होंने कहा,
We do not have enough technical evidence to state definitively who is behind this.
पर्याप्त तकनीकी सबूत नहीं होने की वजह से हम ये तो नहीं बता सकते कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अकाउंट्स रूस की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी से जुड़े हैं। ये अकाउंट्स उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ये थे फेसबुक की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख के शब्द। फेसबुक ने एक ब्लॉग में बताया है कि उसने 17 संदिग्ध फेसबुक प्रोफाइल और 7 इंस्टाग्राम अकाउंट्स की पहचान की है। इन अकाउंट से 9,500 से ज्यादा फेसबुक पोस्ट किए गए थे और इंस्टाग्राम पर एक जैसी सामग्री थी। इनमें से एक पेज को 2,90,000 से ज्यादा अकाउंट फॉलो कर रहे थे। फेसबुक ने बताया है कि संदिग्ध अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगभग 150 विज्ञापन चला रहे थे जिनकी कुल लागत $11,000 है। अमरीका की गृह मंत्री ने फेसबुक के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने चेतावनी देते हुए कहा,
Any attempt to interfere in our elections is an affront to our democracy and it will not be allowed.
हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोई भी कोशिश हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अमरीका अपने चुनावों में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप, चाहे वो रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया या किसी और देश की तरफ से हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थे अमरीका के उपराष्ट्रपति के शब्द। फेसबुक ने कहा है कि रूस स्थित इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने जो कुछ अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किया था, उसकी तुलना में इन अकाउंट्स को बनाने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया है। जैसे कि उन्होंने अपनी जगह की पहचान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का सहारा लिया है और अपने विज्ञापनों के लिए तीसरी पार्टी की मदद ली है।
चुनावी हस्तक्षेप की आशंका से पहले फेसबुक की कार्रवाई। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत कौर। इस साल 20 जुलाई तक भारत प्रशासित कश्मीर के 87 युवक चरमपंथ की राह पकड़ चुके हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कल संसद में दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि अनंतनाग जिले से 14, पुलवामा से 35, शोपियां से 23 और कुलगाम जिले से 15 युवक चरमपंथी बन गए हैं। यही नहीं, 12 युवक 20 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद लापता हुए, जिन्होंने बाद में चरमपंथ का रास्ता पकड़ लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ये जानकारी भी दी कि केंद्र सरकार ने चरमपंथी गतिविधियां रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन से बात की और जानना चाहा कि सरकारी दावों के बावजूद घाटी के युवाओं का चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होना क्यों नहीं रुक रहा है।
जी, हकीकत तो ये है कि जब से एक तो उन्होंने डायरेक्ट बागडोर संभाली है सरकार की, रियासत की, और एक जो सीज फायर पहले ऐलान किया और उसमें अगर हम देखते हैं उसमें आंकड़े जो हैं, जो लड़के मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे उसमें काफी कम हुए थे, तो इसका मतलब है कि जहां जहां आपके मिलिट्री मेथड जब कम इस्तेमाल होंगे तो उसमें कम जो अट्रैक्शन होएगा गन का लड़कों में, और उसके बाद जैसे ही सीज फायर कॉल ऑफ हुआ उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तादाद में लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक जो कांस्टेंट ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस वहां पे चल रहे हैं पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से, और जिनमें दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है. और ये एक हाल ही में जो यूएन रिपोर्ट आई थी जिसको कि केंद्रीय सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है विदाउट एनी किसी एक ठोस बिना पे नहीं, उसने भी इस बात को स्पष्ट तरह से, यूएन रिपोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो ज्यादतियाँ हो रही हैं और जो ज्यादतियाँ हैं वही बड़े पैमाने पे युवक हैं उनको बंदूक की तरफ धकेल रही है.
गृह राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि जब से राज्यपाल का शासन जम्मू कश्मीर पे लगा है तब से 12 युवक लापता हुए और बाद में उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली. और अब इस तरह की चर्चा है कि राज्यपाल को बदला जा सकता है, तो क्या इस तरह के कदमों से हालात में कुछ सुधार होने वाला है?
देखा गया है पिछले कुछ सालों में ग्राउंड सिचुएशन में अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा ज्यादती होगी, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे तो उससे हालात और बिगड़ेंगे. वहां पे जरूरत है लोगों से बातचीत करने की, खासतौर पर ये जानने की कि ये युवकों में गुस्सा क्यों है. आप देखिए पूरी हिस्ट्री है बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन की और आज तक कोई केसेस जो है वो कभी भी फेयरली उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनका कोई हल नहीं हुआ और उसमें कोई जस्टिस का कोई एक मैकेनिज्म ऐसा सेट नहीं हुआ कि उन केसेस के साथ डील किया जाए.
कश्मीरी युवाओं का चरमपंथ की ओर जाना, विस्तार से बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा बसी. भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच सीमा पार कर मछली पकड़ने की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जहां भारत का दावा है कि श्रीलंका ने 100 से भी ज्यादा भारतीय मछुआरों को मार डाला है, वहीं श्रीलंका का कहना है कि भारतीय मछुआरे गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर उसके क्षेत्र में मछलियां मारने आते हैं. बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा, नेहा शर्मा और नियास अहमद ने भारत और श्रीलंका के बीच तटवर्ती इलाकों का सफर किया और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की. सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट आदर्श राठौर की आवाज में.
तमिलनाडु के रहने वाले सगे राज एक बार फिर बेहद मुश्किल सफर पर निकल पड़े हैं. वो मछुआरे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो वापस लौट भी पाएंगे या नहीं. 10 साल पहले एक ऐसे ही सफर में उन्होंने अपने भाई को खो दिया था.
उस दिन दोपहर 3 बजे श्रीलंका की नौसेना हमारे तरफ आई और फायरिंग शुरू कर दी. हमने हाथ उठा लिए. आमतौर पर उन्हें रुककर हमसे पूछताछ करनी चाहिए थी लेकिन वो गोलियां चलाते रहे, इसलिए हम समंदर में कूद गए. मैं तो बच गया लेकिन मेरे भाई को 17 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई.
श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय मछुआरे समंदर के जरिए श्रीलंका में प्रवेश करके गैर कानूनी तरीके से मछलियां पकड़ते हैं. वहीं भारत का कहना है कि श्रीलंका ने 100 से भी ज्यादा भारतीय मछुआरों को मार डाला है. मछुआरे कहते हैं कि अब भारतीय समुद्र तटों पर पर्याप्त मछलियां नहीं रही, इसलिए मजबूरी की वजह से उन्हें श्रीलंका की तरफ जाना पड़ता है. उनकी दूसरी समस्या है कच्चातीवु द्वीप. 1974 में भारत ने इसे श्रीलंका को दे दिया था. 1976 तक तो भारतीय मछुआरों को वहां जाने की इजाजत थी लेकिन उसके बाद से उनकी आवाजाही पर रोक लग गई. भारतीय मछुआरों की यूनियन के नेता सेसुराज कहते हैं कि कच्चातीवु द्वीप के आसपास जाना मछुआरों की मजबूरी है.
कच्चातीवु द्वीप के आसपास मछलियों की काफी ब्रीडिंग होती है. श्रीलंका के तरफ के हिस्से में ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, इसीलिए हमें सीमा पार करनी पड़ती है. 2014 से हम श्रीलंका के मछुआरों से बात कर रहे हैं कि वो साल में केवल 80 दिन के लिए ही सही हमें वहाँ जाने दे.
लेकिन श्रीलंका के पूर्व मत्स्य मंत्री रजिता सेनारत्ने कहते हैं कि श्रीलंका भारतीय मछुआरों को सीमा पार करके मछलियां पकड़ने की इजाजत नहीं दे सकता.
हम भारतीय मछुआरों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं. यही इस समस्या का एकमात्र उपाय है. भारत सरकार को उन्हें गहराई में जाकर मछली पकड़ने के लिए सुविधा मुहैया करानी चाहिए.
समंदर की दूसरी ओर श्रीलंकाई मछुआरों का नजरिया भारतीय मछुआरों से अलग है. अन्नामलई 35 साल से मछलियां पकड़ने का काम करते हैं. उनका कहना है कि भारतीय मछुआरे ऐसे जाल और जहाजों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर बैन लगाया जा चुका है और उनसे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है.
फुरस्ते की जगह तारों का प्रयोग करते हैं, जिससे तटों पर मिट्टी की जगह केवल रेत रह जाती है। भारत में उन्होंने ऐसा करके अपने साधनों को नुकसान पहुंचाया है और अब वो यहां भी सब खत्म करना चाहते हैं।
लेकिन भारतीय मछुआरे इन आरोपों से साफ इनकार करते हैं। अब तक 1400 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 150 भारतीय नावों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जब तक समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता, तब तक भारतीय मछुआरे जान हथेली पर रखकर अपनी रोजी रोटी के लिए सीमा पार करते ही रहेंगे।
श्रीलंका समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरों की स्थिति, रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर।
चीन और भारत, दो प्राचीन संस्कृतियां, दो पड़ोसी देश। चीन जहां अब भी महात्मा गांधी के प्रशंसक मौजूद हैं। चीन जहां शंघाई जैसे जादुई शहर हैं।
और पिछले 14 साल के अंदर जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारी डेवलप हुई है। और क्यों हुआ है? बिकॉज शंघाई हांगकांग से कम्पीट करता है।
और हिंदी फिल्मों के लिए दीवानगी भी।
कोई बता दे मैं हूं कहां।
सुनिए चीन की कहानियां, मैं विनीत खरे जल्द ही लेकर आऊंगा बीबीसी हिंदी रेडियो पर।
आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए खेमे में वापसी से वे नाराज हैं और 2019 से पहले एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार को दिए इंटरव्यू में इन कयासों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रधानमंत्री के रुख, SC/ST एक्ट में बदलाव और स्कूली सिलेबस के भगवाकरण जैसे सवालों पर भी बात की।
जो सिलेबस की बात आप कर रहे हैं, बुक्स में बदलाव की बात कर रहे हैं, NCERT की किताब तो सिर्फ स्कूल्स के लिए है, लेकिन सिलेबस में कहीं बदलाव इस बात को ध्यान में रखकर कि कोई खास विचारधारा को उसमें लाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ये गलत प्रचार है, इस तरह की कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ आरोप है हम लोगों के।
आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है उसका नारा है सबका साथ सबका विकास, और लेकिन सरकार की इन उपलब्धियों के बजाय ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही है हिंदू मुसलमान गाय। आप देखिए कि आपके मंत्रालय के एक सहयोगी मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों को माला पहनाते हैं, एक दूसरे सहयोगी हैं वो संविधान को बदलने की बात कहते हैं, और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से दलितों के उत्पीड़न की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आप एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे क्या सोचते हैं?
देखिए, जितनी खबर आ रही है, हम मानते हैं कि कुछ जगह उस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितनी खबर आ रही है सब खबर में सच्चाई ही हो, ऐसा यह कहना सही नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक कुछ मिनिस्टर्स के बयान देने की बात है या उनके एक्शन की बात है, इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर की ओर से इस तरह का आता है तो प्रधानमंत्री जी अंदर से प्रभावित होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन के विपरीत इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर लोग चर्चा करें, विकास पर अब राजनीति हो, इस तरह की बातों पर राजनीति नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग बोलते हैं, और निश्चित रूप से पहले भी कई बार उन लोगों के स्टेटमेंट पर मैंने भी आपत्ति व्यक्त की है, और इस तरह की बात अगर कहीं आती है जिसमें किसी के सेंटिमेंट को उभार करके अगर कुछ राजनीति करने की कोशिश की जा रही हो तो यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कई बार हुआ है, मैं मानता हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि आपत्तिजनक, अगर ऐसा कहीं होता है तो आपत्तिजनक।
आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद बहुत चिंतित रहते हैं और उनको बहुत व्यथा होती है, दूसरी तरफ हम लोग बार बार ये देख रहे हैं कि जब भी कोई मॉब लिंचिंग की घटना होती है वो चुप रह जाते हैं, उसका जिक्र नहीं करते, कोई ट्वीट नहीं करते, और देश दुनिया में कोई भी छोटी बात हो तो उस पर उनका ट्वीट आता है, तो ये दोनों बातें लगती है।
देखिए, कई बार गृहमंत्री जी की ओर से कई बार हुआ है, स्टेट को डायरेक्शन गया है, बजाबता पार्लियामेंट में कई बार उन्होंने कहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टेट का होता है, इसलिए स्टेट में जहाँ भी कहीं इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो उसको देखने की जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट की है और एक्शन करा से करा एक्शन उस पर हो। एक बार प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार जो तथाकथित गौ रक्षक लोग हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी आपत्ति व्यक्त की कि ऐसा नहीं चल सकता है, कानून को कोई अपने हाथ में ले या ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है।
उन्हीं की सरकार में एससी एसटी एक्ट में बदलाव हुआ और उस बदलाव को करने वाले जज को अगले दिन सेवानिवृत्त के अगले दिन एनजीटी का जज बनाया गया। आप उनको हटाने की मांग कर चुके हैं, आप ही नहीं रामविलास पासवान जी ने भी हटाने की मांग की है, लेकिन मान रहे हैं लोग, कुछ लोग समाज का तबका मानता है कि इसमें थोड़ी देरी हुई आप लोगों से।
अगर आप देखिए एक्ट में बदलाव जिस वक्त हुआ था और देश भर में एक तरह से कहिए कि लोग आंदोलित हो गए थे, उस वक्त भी सरकार तुरंत एक्शन लेकर कोर्ट गई थी, जो कोर्ट से डिसीजन आया था उस के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर सरकार की ओर से किया गया था और हम लोगों ने भी उस समय कहा था कि किया जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है या ठीक नहीं है, इसे एससी एसटी वर्ग का इंटरेस्ट प्रभावित होगा, तो सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार का कहिए कि मन मिजाज बन चुका है कि अगर कोर्ट से नहीं रेमेडी मिलता है तो पार्लियामेंट में एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़े तो एक्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी। लोगों को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोग निश्चिंत रहें, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के कारण एससी एसटी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होने देंगे हम लोग नुकसान।
आपकी बातों से अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आप एनडीए से थोड़े नाराज हैं और सहज हैं, वैसी स्थिति नहीं लग रही है। मतलब ये है कि 2019 का जो चुनाव है उसमें आप एनडीए के साथ रहेंगे।
देखिए कयास लगाने वाले लगाते थे तब भी, कोई हमारी ओर से कुछ भी नहीं था। अब कयास लगाने वाले लगाते थे उस पर हम क्या, हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है, लेकिन एनडीए में हम हैं, हमने हमेशा कहा है हम एनडीए में हैं।
एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे?
बिल्कुल हैं, रहेंगे, बता तो रहे हैं।
ऐसी स्थिति में 2019 में बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और आपकी दावेदारी कितनी सीटों के लिए होगी?
देखिए सीटों का बंटवारा कैसे होगा तो एनडीए के लीडर्स बैठ कर तय करेंगे, कितनी सीटों पर यह तो वहाँ चर्चा होगी, मीडिया के माध्यम से इसकी चर्चा नहीं हो सकती।
नीतीश कुमार को लेके आपकी कोई मुश्किल है या आप सहज नहीं रहते या असहज रहते? ऐसी तमाम मीडिया में चर्चाएं चलती हैं कि एनडीए में जब नीतीश जी की वापसी हुई तो सबसे ज़्यादा नाराज उपेंद्र जी हो गए।
नहीं देखिए उसमें जब नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी एक साथ हो सकते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था, जिस वक्त हम लोग समता पार्टी चला रहे थे नीतीश जी के लीडरशिप में तो पूरी की पूरी राजनीति उस वक्त की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली राजनीति लालू यादव जी के खिलाफ वाली राजनीति थी, लेकिन दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए। तो इसलिए पॉलिटिक्स में कोई अंदाज के आधार पर कह देना कि कोई दो व्यक्ति एक साथ नहीं और मेरे बारे में कि नीतीश जी के साथ हम कम्फर्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम एनडीए में बिल्कुल कम्फर्ट हैं, सहज हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है।
तेजस्वी बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आप तो आना है, आ जाएंगे, इसका कोई भविष्य नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बोल रहे हैं लोग विपक्ष के लोग उनकी बातों का कोई राजनीतिक अर्थ मेरे लिए नहीं है।
आप ही का बयान है अभी आपने दिया है दो तीन दिन पहले, इसमें जो बिहार का चुनाव हो उसमें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नीतीश जी को छोड़ देनी चाहिए।
नहीं देखिए हमने वो दूसरे अर्थ में कहा है, हमने कहा जरूर है लेकिन दूसरे अर्थ में हमने कहा, नीतीश कुमार जी 15 साल अब पूरा करेंगे जब कार्यकाल उनका पूरा होगा, उनका जो खुद का व्यक्तित्व जिसको हम बहुत नज़दीक से जानते हैं, राजनीति से अलग हटकर, हमने उस दिन भी कहा है कि राजनीति की बात इसमें नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से जो उनसे हमारा रहा है और उसके आधार पर जितना हम उनको समझ पाए हैं उसके आधार पर मुझको लगता है कि अब नीतीश जी खुद ही छोड़ देंगे आगे के लिए, ऐसा मुझको लगता है।
उनके छोड़ देने पर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा?
नहीं कौन बनेगा ये तो कोई भी हो सकता है, कौन बनेगा नहीं, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हमारा यही कहना है कि कोई हो सकता है।
ये थे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जिनसे बातचीत कर रहे थे बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार। अब चलते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है, जान लेते हैं। अखबारों के साथ गुरप्रीत मौजूद हैं। जी गुरप्रीत, बताएं।
क्या कुछ जी है? शाहिद, असम की एनआरसी सूची के मामले पर कल संसद में जमकर हंगामा हुआ है, विपक्ष ने सरकार को घेरा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया कि एनआरसी सुरक्षा का मुद्दा है, उन्होंने सभी दलों को इस पर अपना रुख साफ करने को कहा।
साथ ही उन्होंने विपक्ष पे भी कहा कि आप नहीं कर पाए, हमने किया है, जी ये सारी चीजें भी कही हैं।
जी, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसी पर कहा है कि एनआरसी को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि देश में रक्तपात होगा और गृह युद्ध छिड़ जाएगा।
जी,
इसके अलावा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के इमरान खान ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं।
जी, अमर उजाला में इसी खबर को लेकर एक हेडिंग है कि इमरान खान से न्योता मिला तो पीएम मोदी के बजाय प्रतिनिधि जा सकता है पाक।
अच्छा, और बताएं।
इसके अलावा जनसत्ता में खबर है, न्यायाधीश लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है,
जस्टिस लोया मामले में।
जी,
इसके अलावा हिंदुस्तान पे एक हेडिंग लगी है कि भूख से एक और मासूम की मौत का अंदेशा, मंडावली में दिल्ली के सटे हुए इलाके में भूख से तीन बहनों की मौत का मामला तो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि साहिबाबाद में एक 3 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई है।
जी, इसके अलावा ब्रिटेन में कारोबारी विजय माल्या के मामले में सुनवाई कर रहे एक जज ने भारत की उस मुंबई जेल का वीडियो मंगवाया है जिसमें इनको रखे जाने की, माल्या को रखे जाने की बात कही जा रही है। वो जज देखना चाहते हैं कि खिड़कियों में रोशनी आने का वहाँ पे क्या सिस्टम है, रोशनी आ रही है नहीं, क्योंकि माल्या ने फोटोज़ कुछ दिखाई थी उन्हें और कहा था कि वहाँ पे नेचुरल लाइट का कोई आने जाने का कुछ है नहीं, तो उन्होंने वीडियो मांगा है। इसके अलावा जो किक डांस, एक काफ़ी किक डांस चैलेंज काफ़ी जगह लिया जा रहा है, चलती गाड़ी से उतर के लोग डांस कर रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर एक हेडलाइन है, इसको लेकर खबर है अमर उजाला में, जो कहती है कि किक डांस किया तो जाना पड़ सकता है जेल।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए गुरप्रीत। लंदन में चल रहे महिला हॉकी विश्व कप में कल भारतीय टीम ने इटली को 3-0 से मात दे दी, जिसके बाद भारतीय महिला टीम ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब नॉकआउट मुकाबलों में कल भारतीय टीम आयरलैंड से भिड़ेगी। अन्य खेल की खबरें जान लेते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। आज आपको लेकर चलते हैं लंदन में क्रिकेट के उस मैदान पर जहां भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला है पहला टेस्ट मुकाबला। लेकिन ये मैदान भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बर्मिंगम के एजबैस्टन में ये मुकाबला खेला जाएगा और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का ये पहला मुकाबला होगा। आपको बता दें, भारत ने इस मैदान पर 6 टेस्ट मैच खेले हैं और वह एक भी टेस्ट मैच यहां नहीं जीत पाई है। इस मैदान पर खेले गए टेस्ट मैचों में से टीम इंडिया को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि इस मैदान पर भारतीय हार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आज होने वाला ये टेस्ट मुकाबला विराट कोहली की कप्तानी का भी टेस्ट लेगा। विराट कोहली की कप्तानी में भारत को इंग्लैंड में 11 सितंबर तक टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप खेली जा रही है, जहां पर आज बैडमिंटन कोर्ट पर आपको खेलती नजर आएंगी पीवी सिंधु, जिनका मुकाबला होगा इंडोनेशिया की खिलाड़ी फित्रियानी से। तो वहीं पुरुष वर्ग में दूसरे राउंड में खेलते नजर आएंगे समीर वर्मा, जिनका मुकाबला होगा चीन के खिलाड़ी लिन डैन से। और किदाम्बी श्रीकांत भी अपने दूसरे राउंड के मुकाबले में भिड़ते नजर आएंगे स्पेन के खिलाड़ी पाब्लो अबियान के साथ। और HS प्रणय का मुकाबला होगा ब्राजील के खिलाड़ी घोर कोहेलो के साथ। और साई प्रणीत आपको भिड़ते नजर आएंगे स्पेन के खिलाड़ी लुइस एनरिक के साथ।
भारत में अब से कुछ ही देर में बजेंगे सुबह के 7, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार गुरप्रीत कौर से।
BBC समाचार। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 32 संदिग्ध अकाउंट और पेज को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। फेसबुक को शक है कि ये फेक अकाउंट और पेज नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावर्ती चुनावों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए थे। मैक्सिको के दुरंगो शहर में विमान हादसा हुआ है। राज्य के गवर्नर का कहना है कि दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक निकारागुआ में हुई राजनीतिक हिंसा के बाद हजारों लोग भागकर सेंट्रल अमरीकी देश कोस्टा रिका आ रहे हैं। अमरीका के एक जज ने बंदूक की 3D प्रिंटिंग के लिए ब्लूप्रिंट ऑनलाइन जारी करने पर रोक लगा दी है। जून में ट्रंप प्रशासन ने डिजाइन डाउनलोड करने की अनुमति देने का फैसला किया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया अभिमन्यु कुमार साहा ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें BBCHindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।